वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक 28 एको महे भगवान विविध प्रधान चित्ति कृत पूजन नाय कथम नुजयम अत्र गतास्तनुभृतं मनसापि दुरात् ब्रूत पुषिदत महनीय विस्मयो मे एको मयेहो भगवान विविध प्रधान चित्ति कृत प्रजननाय कथम नुजुयम अत्र गतास्तनुभृतं मनसापि दुरात् ब्रूत पुषिदत महनीय विस्मयो मे एको मयेहो भगवान विविध प्रधान चित्ति कृत प्रजननाय कथम नुजुयम अत्र गतास्तनुभृतां मनसापि दुरात् ब्रूत पुषिदत महनीय विस्मयो मे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वह मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए। कृपया मुझे बताइए कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। विस्मयों में तात्पर्य, अत्रि मुनि का पूरा पूरा विश्वास था कि श्री भगवान ही जगदीश्वर है। अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना की। अतः उन्हें विस्मय हो रहा था कि तीनों किस प्रकार प्रकट हुए हैं। बहुत छोटा तात्पर्य, यही समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सौगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सौगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नम महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसेह नमः। पंचाकल्पतरुभ्यं कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो श्री कृष्ण बलराम मंदिर का बलराम हॉल में सभी का भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। मनु की पुत्रियों की वंशावली। हम इस प्रसंग में हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार मनु महाराज के तीन पुत्रियां आकुति देवहूति और प्रसूति, फिर उसका वंशावली में आगे आकर ये अत्रिमुनि किस प्रकार तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो यह इस श्लोक में हम देखते हैं कि अत्रिमुनि बड़ा संशय में है। उन्होंने भगवान से पूछ रहा है, हे प्रभु आप तीनों किस प्रकार प्रकट हुए। मैं तो एक को भजन किया था, एक के लिए तपस्या किया था, लेकिन आप तीनों प्रकट हुए। तो ये श्लोक में भगवान से अत्रिमुनि वो पूछ रहे हैं कि आप तीनों किस प्रकार आए हैं। आपका ये तनुभृताम देहधारी जो रूप है, जो मन के भी परे है, जो भौतिक प्रपंच से परे है, जो अधक्ष है, आप इस भौतिक इंद्रिय से परे हैं आप, लेकिन आप फिर भी मेरा सामने प्रकट हुए हैं। और मैं तो एक का ही उपासना किया था, लेकिन आप तीनों किस प्रकार प्रकट हुए। हम पिछले श्लोक में देखते हैं कि इस अत्रि मुनि ने 100 साल तक ऋक्ष पर्वत में 100 साल तक एक पेड़ में खड़ा होकर ऋक्ष पर्वत में तपस्या की। हम सोच भी नहीं सकते 100 साल तक एक पेड़ में खड़ा होकर। हम तो जप में आधा घंटा ही नहीं बैठ सकते, भाग जाना पड़ता है, मन चंचल हो जाता है। और एकाग्र चित्त में, यह बताते हैं इस श्लोक में, देखिए बताते चित्तेन उक्कमनित, चित्त को एकाग्र किया था उन्होंने 100 साल तक। चित्त को एकाग्र करके उन्होंने भगवान का उपासना की। और इसका पहले हम देखते हैं कि अत्रिय मुनि का जो पत्नी अनुसुआ, अनुसुआ का जो महिमा है, उनका सतीत्व की जो महिमा है, वो सारा संसार में फैल गया था। और नारद मुनि एक बार अनुसुआ का सतीत्व का महिमा गान करते हुए पहुंच गया ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में पहुंचकर उनका ब्रह्मा जी का जो पत्नी है सावित्री, उनका पास जाकर अनुसुआ का महिमा कीर्तन कर रहे थे। যে মর্তলোক মে এক ঐসা পত্নী হ্যায় সতীত্ব জিসকা সতীত্ব কা মহিমা জগৎ গ্লোরিফাই হো রায়। তো সাবিত্রী জব শুনা যে আরে মর্তলোক মে এক মহিলা উসকা ইতনা সতীত্ব কা মহিমা কেসে হো সকতা হ্যায়, হম স্বয়ং ব্রহ্মা জি কে পত্নী হ্যায়, হামারা সতীত্ব কা মহিমা কোই নেই গান করতে। তো উনকা মন মে নারদ মুনি এক ঐসা ইচ্ছা পেদা কর দিয়া। ফির নারদ মুনি কা তো এই কাম হ্যায় আগে গিয়া উনহনে শিবলোক মে কৈলাশ মে যাকর সিধা অন্দর মহল মে যাকর সাবিত্রী সে কোন হ্যায় দুর্গা দেবী পার্বতী সে মিলে, পার্বতী সে মিলকর উনহনে দেবী অনুসুয়া কা সতীত্ব কি মহিমা কা মহিমা কীর্তন করনে লাগে। জব অনুসুয়া কা মহিমা শুনা তো দেবী পার্বতী কা মন মে ভি ইচ্ছা পেদা হো গিয়া কি মে বৈষ্ণব নাম যথা শম্ভু ভগবান শিব যে উনকা পত্নী হু মে আর মে এ মায়া অধ্যক্ষ না মায়া মায়া কা অধিষ্ঠাত্রী দেবী হু মে আর মেরা মহিমা কই নেই গান করতে ইতনা মেরা সতীত্ব কা আর দেবী অনুসুয়া কা সতীত্ব কা মহিমা ইতনা ইতনা কীর্তন কেসে হো রায়। ফির উনকা অন্দর এই ইচ্ছা কো পেদা করকে নারদ মুনি আগে বিনা বাজাতে হুয়ে বৈকুণ্ঠ লোক মে প্রবেশ কিয়ে ক্ষীর সাগর মে যাহ পর ভগবান বিষ্ণু বিরাজমান হ্যায় ওয়া পর লক্ষ্মী জি সে মিলা আর লক্ষ্মী জি কো ভি অনুসুয়া কা মহিমা কীর্তন করনে লাগে। আর যাব অনুসুয়া কা মহিমা শুনা লক্ষ্মী জি তো লক্ষ্মী জি ভি ও যে মে স্বয়ং সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী হু আর মেরা মহিমা ইতনা কীর্তন নেই হো রায় জিতনা এক মর্তলোক কা এক মহিলা কি সতীত্ব কা কীর্তন হো রায়। তো উনকা মন মে ভি ইচ্ছা পেদা হুয়া আর তিনো আপনা আপনা পতি সে রিকোয়েস্ট করনে লাগা যে আপ তিনো কো মতলব আপনা আপনা পতি সে সব লোক প্রার্থনা কিয়া যে যাকে এস অনুসুয়া কা সতীত্ব কি পরীক্ষা লেনা হ্যায়, সব লোক আপনা আপনা পতি পত্নী কো সমঝানে কা প্রয়াস কিয়া লেকিন মানা নেই, পত্নী হট হ্যায় বাল হট হ্যায় ইয়ে হট বড় খতরনাক হট হ্যায় আর পত্নী কে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হতি হ্যায় উনকা আঁখো কি পানি অশ্রু সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তো সারে দেব ফেল হো গিয়া সো আপনা আপনা স্বরূপ মে মহর্ষি অত্রি কে আশ্রম কা বাহার প্রকট হুয়ে ফির তিনো মিলা তিনো দেব মিলা বলা হরে হাম ভি আয়ে পরীক্ষা লেনে, বলা মে ভি আয়ে পরীক্ষা লেনে, বলা এই নারদ মুনি কা হি কাম হ্যায় সব আপনা আপনা পত্নী কি হৃদয় মে ইচ্ছা কা পেদা কর দিয়া আর হাম তিনো ফোর্সফুলি ইহা পৌঁছা হ্যায় সতী অনুসুয়া কা সতীত্ব কি পরীক্ষা লেনে কে লিয়ে। তো তিনো আবি ইষ্টগোষ্ঠী কিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করকে আপনা স্বরূপ আপনা রূপ চেঞ্জ কিয়া এক ব্রাহ্মণ কে রূপ মে তিনো ব্রাহ্মণ কে বেশ মে তপস্বী কে বেশ মে উস আশ্রমে যাকে ভিক্ষা মাগা সতী অনুসুয়া সে ভিক্ষা মাগা লেকিন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই কিয়া কি হে সতী আপকো নির্বস্ত্র হোকর হমে ভিক্ষা দেনা হ্যায় ভোজন দেনা হ্যায়। তো এক সতী নারী আপনা পত্নী কে এলাবা কিসি কা পর পুরুষ কা সামনে তো নির্বস্ত্র হো নেই সকতি। তো সতী অনুসুয়া আপনা সতীত্ব কে বল পর উস তিন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ কো বালক কে রূপ মে পরিণত কর দিয়া, ছোটে ছোটে বালক না দিয়া আর যখন ছোটে বালক হ্যায় বাচ্চা হ্যায় তো গোদ মে লিয়া দুধ পিলায়া আর ভোজন করায়া উনকা কন্ডিশন পুরা কিয়া। এদা তিন দেব আপনা আপনা লোক মে বাপস নেই আ রায় কাফি দিন হো গিয়া এ তিন পত্নী কা উৎসুকতা বাড়তে যা রায়। ফির নারদ মুনি নে আকে নিউজ বাতায়া জি এ নিউজ হ্যায় মর্তলোক কে তোমারা তিন পতি ও আবি বালক কে রূপ মে সতী অনুসুয়া কা গোদ মে খেল রায়। जब ईश्वर का न्यूज आए तो तीनों देवी फिर आकर सती अनुसुआ से प्रार्थना किया और अपना अपना स्वामी को वापस लेके गया। लेकिन अत्रि मुनि और सती अनुसुआ प्रार्थना किया पुत्र के रूप में अपना पास प्रकट होने के लिए, हमेशा लालन पालन करने के लिए उनका अंदर ये इच्छा पैदा हुआ। फिर जाकर अत्रि मुनि ने ऋक्ष पर्वत में 6 साल तक एक पेड़ में खड़ा होकर तपस्या किया। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अत्रि मुनि का यह संशय है कि कौन भगवान है, ब्रह्मा भगवान है ना, विष्णु भगवान है ना, ये महेश भगवान है, उनका अंदर एक संशय है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं वस्तु तो अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। ये देखिए उनका क्वालिफिकेशन, जानते नहीं थे कौन भगवान है वा विष्णु का स्वाभाविक स्थिति क्या है, लेकिन उनका ये विश्वास था जो भगवान कोई भौतिक देहधारी जीव नहीं हो सकते, ये माया से परे कोई एक दिव्य पुरुष है। तो ये विश्वास उनका अंदर था। आजकल का जो मायावादी फिलोसफी है वो बताते हैं भगवान आके यही पर माया का अंदर में प्रवेश करके वो मायाबद्ध जीव बन जाते हैं। ये बहुत गलत धारणा है। उस मायावाद फिलोसफी से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो तो मायावादी कृष्ण अपराधी। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो मायावाद है, जो बताते हैं मैं भी भगवान हूं आप भी भगवान हैं और हम सब अभी मायाबद्ध हैं, माया मुक्त होने के बाद हम भगवान हो जाएंगे, घटाकाश पटाकाश, हमें भी घट में है बाद में पट में है बाद में आकाश में चला जाएंगे, बड़ा बन जाएंगे। इस प्रकार फिलोसफी मायावाद का है, घटाकाश पटाकाश फिलोसफी। बताते मायावादी भाष्य सुने ले है सर्वनाश, इवन मायावादी भगवान को प्राप्त करने का तो बात ही दूर रहा। अगर कोई मायावादी का संग करे, मायावादी का भाष्य सुने तो उसका भी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सतर्कता से सावधानी किया है कि कोई मायावादी भाष्य ना सुने, मायावादी का संग ना करे, क्योंकि वो खतरनाक है। और सबको बहुत अच्छा लगता है वेद का जो पुष्पित वचन है, ये सबको अपना प्रशंसा अपना बड़ापन सबको सुनने में अच्छा लगता है। अगर कोई बताए आप महान हैं, आपका अंदर इतना शक्ति है, आप ये कर सकते और अल्टीमेटली आप ही तो भगवान है ना, बहुत सुंदर लगता है सुनने में। और इस प्रकार दूसरा को इस प्रकार प्रशंसा करके समाज को कई सारे लीडर है को जो नरक की ओर लेके जा रहा है, दिशा उसका खुद अपना दिशा मालूम नहीं है, और जो उसका श्रोता है क्लाइंट है ऑडियंस है उनको भी दिशा मालूम नहीं है कहां जाना है। और वो अंधा जता अंधान उपोगीय मानात, एक अंधा अंधा दूसरा अंधा को अगर रास्ता देखा है तो कहां जाके पहुंच सकते, सबके सब गड्ढे में जाके गिरते। तो यहां पर देखिए भगवान को प्रार्थना किया उस भगवान को, जो भगवान इस त्रिगुणातीत है, जो परमेश्वर है, और त्रिमुनि उस भगवान का तपस्या की और उस भगवान और त्रिमुनि का सामने प्रकट होकर प्रकट हुए। तो अत्रि मुनि के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का चिन्ह 600 चिन्ह लेकर आए वो लोग, क्या चिन्ह था? एक वृष हंस सुपर्ण स्थान सिन्न चिन्हितान। एक वृष पर आरूढ़ होकर आए, वृष पर आरूढ़ होकर कौन आए? कौन? भगवान शिव, उनका वाहन है वृष। और फिर हंस, हंस पर आरूढ़ होकर कौन आए? ब्रह्मा जी। और सुपर्ण, सुपर्ण मीन्स गरुड़, गरुड़ पर आरूढ़ होकर कौन आए? भगवान विष्णु। और उनका सब अपना अपना चिन्ह है, वो सब चिन्ह लेके आए, चिन्हित चिन्हितान। अपना अपना हाथ में लेके आए डमरू, डमरू किसका हाथ में था? शिव जी का हाथ में डमरू। फिर कुश ब्रह्मा के हाथ में, और भगवान विष्णु के हाथ में चक्र। तो ये सब भगवान अपना अपना चिन्ह लेकर जब आए, तो अत्रि मुनि समझ गया कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव जी है। तो फिर ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश जी को देखकर अत्रि मुनि एक पैर में उनका पास जाकर पहुंचा चल के। फिर कीटांजलि कीटांजलि होकर उनको स्वागत किया, फिर उनको दंडवत किया, दंडवत बिल्कुल सीधा उनका सामने में दंडवत होकर प्रणाम किया। और प्रणाम होकर जब प्रणाम किया, तब अत्रि मुनि देखा कृपा अवलोकन हसत वदनेन उपलम्बितान, कि कृपा से देखते हुए उस तीनों देव अत्रि मुनि की ओर कैसे देख रहे थे? कृपा अवलोकेनो, कृपा दृष्टि से देख रहे थे कि इस अत्रि मुनि ने कितना वर्षों तक तपस्या किया है, एक पैर में खड़ा होकर अपना शरीर का कोई ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं किया। तो कृपा अवलोकेनो, भगवान का कृपा इस प्रकार प्राप्त होता है, तपस्या के द्वारा। तपस्या करने से भगवान का कृपा ऑटोमेटिक हमारे ऊपर बर्षित होता है। श्रील प्रभुपाद हमें बहुत ही स्वाभाविक सरल तपस्या दिया है, 10 मंगलारती अटेंड करना, जप करना 16 माला, और क्लास अटेंड करना, और पेट हाथ लेना, वैसे ही तपस्या है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते, कोई अगर कंटिन्यू ये करे तो उसको भगवत प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं, भगवत धाम का दर्जा उनके लिए खुला है। प्रभुपाद जी बताते, मेरे पास बैक डोर का चाबी है, बस इतना करो, कोई वैष्णव अपराध ना करें। और इस प्रकार जो साधना श्रील प्रभुपाद जी दिया है, तपस्या दिया है, मिनिमम तपस्या इतना करें तो हमें भगवान का कृपा जरूर प्राप्त होगा। कृपा करके पाना, तो कुछ तो करना पड़ता है। तो यहां पर अत्रि मुनि किया, तपस्या किया, और तपस्या करके कृपा अवलोकेनो, उस तीनों देव की कृपा दृष्टि उन्होंने प्राप्त किया। और उसके बाद हसद बदेनेनो उपलम्बितान, हसद बदेनेनो, देखा वो तीनों देव हंस रहे। अगर कोई आपके ऊपर प्रसन्न है तो आप कैसे समझ सकते हैं? जो आपके ऊपर प्रसन्न है उसका चेहरा में खुशी का हंसी है, हंसी है उसका बदन में। तो हंसी देख के हम समझ सकते हैं जो मेरे ऊपर प्रसन्न है। सिम्टम्स है शरीर में कि कोई अगर कोई किसके ऊपर प्रसन्न है, तो कोई किसको आशीर्वाद देता है, कोई साधु वैष्णव महात्मा आशीर्वाद देता है, तो उसका सिम्टम है कि वो पूर्ण रूपे आशीर्वाद उसके ऊपर दे रहा है। पहले वाणी से किसने मति रस्तु, हाथ उठा दिया हाथ के द्वारा, फिर प्रसन्न वदन, तो हम समझ सकते हैं जो ये व्यक्ति मुझ पर प्रसन्न है, और नहीं कोई जस्ट अवॉइड करने के लिए, ठीक है किसने मैं तिरस्त, जाओ जाओ। तीनों एक साथ में मिल जब जाता है, बॉडी लैंग्वेज हाथ उठ गया आशीर्वाद के लिए, और वचन भी निकला अच्छा सुमधुर वचन और प्रसन्न वदन, तो वो कृपा प्राप्त किया है। अन्य कृपा एक असली कृपा और एक वंचित कृपा, अदरवाइज वंचित कृपा लेकर जग गया। तो असत वदने न उपलम्बितान, और त्रिमुनि देखा कि मेरा ऊपर प्रसन्न है, मेरा ऊपर कृपा का दृष्टि डाला है, और इनका मुंह में हंसी है। तब त्रिमुनि ने पूछा आज की श्लोक में, एको महेयो भगवान विविधो प्रधानोय, कि भगवान तो एक है, परमेश्वर भगवान एक है, लेकिन रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, रामादि मूर्ति नाना अवतार मकुरेत भुवनेन, किंतु तो एक ही भगवान एक है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लीला विस्तार के लिए नाना अवतार मकुरेत बहुत सारे अवतार ग्रहण करते हैं। यहां पर सीधा सही बताते हैं कि प्रपंचो मिला के एक है, विविध हो, प्रपंच में बहुत सारे प्रकार के सरंजाम हैं और सब मिला के एक है, विविध हो प्रधान हो। और बताते अत्रि मुनि चित्तीकृत पूजन नाय कथम नु जुयम, चित्तीकृत उनका चित्त कैसे किया है उन्हें, चित्ते ऐक्यम नित, चित्त एकाग्र किया, और चित्त एकाग्र करके लेकिन उनका मन में आसना क्या, प्रजननाय। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ये भौतिक वासना था, उन्होंने एक पुत्र संतान प्राप्त करना चाह रहे थे, जो पुत्र संतान भगवान के समान हो। उन्होंने ऐसा नहीं मांगा जो भगवान ही मेरा पुत्र के रूप में आए, अगर भगवान ही मेरा पुत्र के रूप में आए ऐसा वासना होता तो वो भक्ति कहलाते, शुद्ध भक्ति कहलाते। लेकिन इन्होंने भौतिक वासना किया जो भगवान के समान एक पुत्र प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी बताते अत्रि मुनि उतना शुद्ध स्तर के भक्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने जानते थे जो भगवान परमेश्वर हैं वो मेरा इच्छा को पूरा कर सकते, और वो ये त्रिगुण अतीत हैं, उनका एक दिव्य रूप है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, तो उस भगवान मेरा इच्छा को पूरा कर सकते। तो यह क्वेश्चन ये है कि अगर अत्रि मुनि पुत्र के लिए कामना किया है तो ये तीनों देवों के प्रकट होने का क्या कारण है। अत्रि मुनि स्वयं क्वेश्चन पूछा जब आप तीनों किस लिए प्रकट हो गए, इस श्लोक में देखिए अत्र गतास्तनुभृताम अत्र आगता, आप यहां पर क्यों आए हैं, तनुभृताम आप देहधारी इस रूप को धारण दो रूप लेकर आए हैं, इस जो रूप है आपका, इस रूप मनुष्योपि दुरात कोई मौन से भी दर्शन नहीं कर सकते, आप इतना दूर दूर है, इतना कठिन है आपको प्राप्त करना, आपका दर्शन करना, लेकिन फिर आप प्रकट हुए हैं। ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं स्थान अभिलाषी तपसी स्थित हम ताम प्राप्तवान देव मनीन्द्र गुज्जम काचन विशिन्वन अति दिव्य रत्नम सामीन कृतात्तस्मि वरम न जसे हैं। श्री ध्रुव महाराज बताते हैं स्थान अभिलाषी तपसी स्थित हम, मैं तो अपना पिता महाब्रह्मा से भी बढ़कर एक राज्य प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। काशन विशिन्वान अति दिव्य रत्नम, लेकिन मैं काश ढूंढने आया था और मुझे उस दिव्य रत्न प्राप्त हुआ है जो देव मनिंद्र गुज्जम। इस मर्त्यलोक की मनुष्य की तो कहना ही क्या है, देव मनिंद्र गुज्जम, देव मनिंद्र बड़ा बड़ा देवताओं से परे है, जो देवता लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका दर्शन उस भगवान का दर्शन में प्राप्त किया है। तो हे प्रभु, हे स्वामी, मैं कृतार्थ अस्मि, मैं संपूर्ण रूप से मैं कृतकृत्य हूं, वरम न जाते, मैं कोई वर नहीं चाहता हूं। तो यहां पर अत्रि मुनि भी बताते हैं, मनसः अपि दूरात्, मन से भी हम दर्शन करना दूर है, और उस हे प्रभु आप लोग मेरा सामने प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए आप? तो बताते हैं, कथम नु जुयम त्रयो अपि अत्र आगता, आप कैसे अत्र आगता, कैसे यहां पर आगे? तेषाम दर्शनस्य दुर्लभत्तम, आपका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभत्तम, दुर्लभ से दुर्लभ है आपका दर्शन। दर्शति तनु वृताम इति, और मैं दर्शन कर रहा हूं आपका उस तनु रूप की, देवधा देहोर दिव्य रूप की। तनु भृताम देवधारी नाम सर्वेशम अपि मनसो अपि दुरा अगोचरहा, बताते हैं ये तो मन से अगोचर है आप, और आपकी और रूप मेरा सामने प्रकट होकर हुआ है और मैं दर्शन कर रहा हूं। तो भगवान बताते हैं, मतलब आचार्य लोग बताते हैं कि जो उनका जो महान विस्मय है, महान यह विस्मयों में उनका बहुत बड़ा विस्मय है, जो कैसे प्रकट हुए आप तीनों के तीनों, मैं तो एक के लिए तपस्या किया था। तो इनका जो महान विस्मय है, तो बताते हैं भगवान का जो धर्म है, भगवान का धर्म क्या है? भक्त को प्रसन्न करना, भक्त का संशय को दूर करना, भक्त का वचन को रक्षा करना, और ऐसा भी ये तीनों देव पहले वचन दिया था कि हम पुत्र के रूप में आएंगे, तो अपना वचन को रक्षा करने के लिए, भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए और भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उनका संशय को दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। बताते हैं, ममो भक्त से संशय निवृत्तिर भवतम इष्ठा, कि मेरा इच्छा क्या है? मेरा भक्त की जो संशय है उसको दूर करना, यही मेरा इच्छा है। देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा में एक है कि हमारा आचार्य लोग जो बताया, जो कृष्ण बताया, जो परंपरा से हमने प्राप्त किया उसको एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करना, और उसका बाद में अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए हम थक गया, संशय आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव मूड है हमारे पास भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, तो वो संशय भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव मूड है, नेगेटिव भावना है, तो हमारा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। और भौतिक शिक्षा में क्या है? देखिए, भौतिक शिक्षा में पहली एक्सपेरिमेंट, फिर बाद में एक्सेप्ट। पहले एक्सपेरिमेंट करते हो लोग, कई सारे केमिकल, बहुत सारे कुछ लेकर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा है पहली एक्सेप्ट करना, बाद में एक्सपेरिमेंट करना। जैसा कि शास्त्र में बताया, काउडांग इज प्योर, गाय का जो गोबर है वो प्योर है, पवित्र है, उसमें एंटीबायोटिक है। अगर जो लोग कई साल कई हजारों लाखों साल पहले से ये शास्त्र की वचन है सब लोग एक्सेप्ट करते आया है, कोई नहीं इनकार किया आचार्य लोग अपना परंपरा में कि मेरा डांग पवित्र नहीं है, उनका काऊ डांग क्यों पवित्र है, ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं किया, सब एक्सेप्ट किया है। और रिसेंटली कोई विज्ञानी ने प्रमाण किया है कि काऊ डांग इज प्योर। तो शास्त्र में जो बताया वो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना है। उसका बाद अगर हमारा पास कोई संशय है तो हम सीनियर वैष्णव के पास जा सकते हैं हमारा वो संशय का निवारण करने के लिए। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब वृंदावन में थे तो 24 अक्षर का जो मंत्र है, 24 अक्षर तो समझ में आया लेकिन वो आधा जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहे थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब लिखा है ये जरूर सत्य है, ये आधा मंत्र कहीं ना कहीं है, तो उनका अंदर ये विश्वास था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो जो स्वयं मंजरी है वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो कभी झूठ लिख नहीं सकते, वो हमारा आचार्य जो है। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर उनका इतना श्रद्धा इतना भक्ति इतना दृढ़ विश्वास है लेकिन फिर भी उस आधा अक्षर का जो अर्थ है वो समझ में नहीं आ रहे, तो उन्होंने डिसाइड किया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो मैं सुसाइड कर देता हूं। तो क्या हुआ, स्वयं राधा रानी आकर सपने में उस मंत्र का अर्थ बताया और बताया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो बताया वो साथ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो भगवान का प्रति अगर हमारा विश्वास है, आचार्य लोक का वचन में आचार्य लोक का जो राइटिंग है प्रभुपाद जी जो बताया उसके ऊपर हमारा विश्वास है दृढ़ है फर्म फेथ है तो भगवान का कृपा हमें जरूर प्राप्त होगा। और ये विश्वास कभी कभी बच्चा की तरह होना चाहिए। एक बहुत सुंदर विश्वास के ऊपर एक पास टाइम है लीला है कि एक बार एक बच्चा ने वो अपना रोज स्कूल जाते थे, गांव से दूर जंगल के रास्ता होकर स्कूल जाना पड़ता था और उस स्कूल में जाते समय जंगल के रास्ता पार करना पड़ता है तो बच्चे हैं तो उसको डर लगता था, बहुत डर लगता था। जिस जंगल के रास्ते में कभी कभी बारिश भी होता है तूफान आ जाता है तो जंगल क्रॉस करने के लिए उनको रोज वो डर लगता था। छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के मतलब 5-6 साल के बच्चा है तो बहुत डर लगता था। तो एक दिन माँ से पूछा, माँ इस जंगल को पार करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है और स्कूल जब छुट्टी हो जाता है जब आने के लिए मेरा भी कोई साथी नहीं मिलता है तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं। तो उनका माँ ने बताया, बेटा एक काम करना, जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम अपना भैया को बुलाना, बड़ा भैया को बुलाना। अरे मेरा कोई बड़ा भैया है? हाँ हाँ तेरा बड़ा भैया है, वो जंगल में रहता है। तो क्या नाम है उनका? मधुसूदन दादा। तो भगवान का एक नाम मधुसूदन है जो मधु को मार दिया, जो भाई हरण कर देते हैं उस मधुसूदन दादा को बुलाना, वो तेरा बड़ा भाई है। तो माँ का इस शब्द में उस बच्चा का दृढ़ विश्वास था कि मेरा भैया जरूर जंगल में है और उनका नाम मधुसूदन दादा है और मुझे जब भी डर लगे मैं बुलाने से वो आ जाएगा। तो एक दिन डर लगा बहुत और भैया भैया मधुसूदन दादा बोल के पुकारने लगा और मधुसूदन दादा नहीं आ रहा है तो रोने लगा। फिर मधुसूदन दादा आ गया और बोला, अरे भैया क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, इतना डरते क्यों? मैं जंगल में रहता हूँ, मालिक हूँ मैं इधर का, तुम कभी भी जाओ, तुम्हारा कोई डर नहीं है, डरो मत, मैं हूँ, कभी भी बुलाओ मैं आ जाएंगे। तो फिर हाथ पकड़ के मधुसूदन दादा उनको जंगल पार कर दिया भगवान ने। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट किया कि जो भी मतलब स्कूल का जो टीचर था, पाठशाला के जो टीचर थे, उनका माँ का मृत्यु वार्षिकी था, तो उस मृत्यु वार्षिकी में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया जो काल मृत्यु वार्षिकी है, तो हम कुछ फिस्ट बनाएंगे, तो अगर किसी के पास समर्थ है अपना घर से कुछ ले आने का तो ले आना, चाल डाल जो भी है। पुराना जमाना में स्टूडेंट लोग की भीख मांग के लेके आते थे, और इस प्रकार चलता था टीचर को, अपना परिवार पालन पोषण होता था। तो सब बच्चा लोग अपना अपना घर में आए और चाल डाल सब पैसा जो भी है समर्थ के अनुसार सब लेके जा रहा है स्कूल में। लेकिन इस बच्चा का घर में कुछ नहीं है, तो माँ से पूछा, माँ मुझे भी तो कुछ लेना जाना चाहिए। सार की माँ की मृत्यु वार्षिकी है, कुछ ले जाना चाहिए, मुझे कुछ दो। तो बताया आप, माँ ने बताया, जा तुरा मधुसूदन दादा है ना जंगल में, उनसे मांग लेना, वो दे देगा, वो कुछ भी देने में समर्थ है, जो मांगेगा वही देगा। तो जंगल में आए और मधुसूदन दादा को पुकारने लगे, फिर मधुसूदन दादा नहीं आ रहा है, तो बाल हट है, रोने लगे, और जब रोने लगे तो मधुसूदन दादा आ गया। और मधुसूदन दादा जब प्रकट हो गया तो पूछा, क्या चाहिए भैया? तो बोला, दादा स्कूल में मुझे कुछ ले जाना है, तो मुझे कुछ दो। बोला, क्या चाहिए? बोला, सब तो चाल डाल सब लेके गया है, लेकिन आप स्वीट राइस दे दो मुझे, स्वीट राइस लेके जाता हूँ। तो मधुसूदन दादा तुरा नहीं था, हाथ किया है भगवान ने और एक स्वीट राइस का पॉट दे दिया, और वो बच्चा ने स्वीट राइस लेकर आके सार को दिया। बोला, सार मेरा भैया ने दिया है, और ये स्वीट राइस में सबको हो जाएगा, जितना आदमी है प्रसाद लेंगे सबको ये स्वीट राइस भरपेट खा सकते, इतना स्वीट राइस इसमें है। उनका विश्वास था, दृढ़ विश्वास। तो टीचर ने समझा, अरे बच्चा मजाक कर रहा है, तो टीचर ने उसको हाथ से फेंक दिया, इतना छोटा बर्तन में स्वीट राइस का क्या होगा, एक आदमी का भी नहीं है। तो जब फेंक दिया तो स्वीट राइस का नदी बहने लगा, स्वीट राइस नदी उस छोटा सा भांडो से निकालने लगा स्वीट राइस का नदी। तब समझ गया ये दिव्य वस्तु है, भगवान ने दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान का प्रति दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, तो भगवान प्रकट हो जाते। भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं फेस टू फेस, ऐसा भी आप भगवान से फेस टू फेस बात कर सकते। भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है। तो यहां पर अत्री मुनि का देखिए प्रसंग में हम देखते हैं, अत्री मुनि का सामने तीनों देव प्रकट हो गया और उनका संशय को निवारण किया। ममो भक्त से संशय निवृत्तिर भवताम इष्टा, जो मेरा भक्त का संशय का निवारण करना ही मेरा काम है। जैसा कि प्रहलाद महाराज का वचन को रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंहदेव खंबा से प्रकट हो गया, तो भगवान का अपना ये भगवत धर्म है, भगवत्ता है, जो भक्त का संशय निवारण करना, भक्त का वचन रक्षा करना, ये भगवान का भगवत्ता है, स्वाभाविक धर्म है। हम जानते हैं जो कोबला और वो पंडित का कहानी, उसमें हम देखते हैं जो कोबलार का विश्वास था, जो मुची उसका विश्वास था, जो भगवान अनंत शक्ति के मालिक है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन वो पंडित का उतना विश्वास नहीं था। जो भगवान एक छुई की आंखों से किस प्रकार हाथी को इधर से उधर कर रहे है, तो वो जब सुना कोबला नाचने लगा। नारद मुनि पूछा, आपको कैसे विश्वास हो गया जी भगवान एक छुई की आंखों से एक विशाल हाथी को इधर से उधर कर रहे, आप कैसे मान लिया, कैसे आप विश्वास कर लिया? तो उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिया, देखिए मैं जिस पेड़ का नीचे खड़ा हूं बैठा हूं, इस पेड़ जो बड़ वृक्ष है ये भगवान ने एक छोटे से दाने को अंदर रखा, तो एक विशाल वृक्ष को अगर छोटे से दाना के अंदर रख सकते हैं भगवान, उस अनंत शक्तिशाली महान भगवान के लिए कोई बड़ा बात थोड़ी है। एक हाथी को सुई का आंखों से इधर से उधर करना, तो ये विश्वास है। नारद मुनि बताया, तुरंत मान लिया कि भगवान अनंत शक्ति के मालिक है, कुछ भी करने में समर्थ है। तो उस भगवान के प्रति अगर विश्वास है, चित्त न एकम नित है, अत्रि मुनि की जैसी है, और हम तपस्या ठीक से करें तो भगवान का कृपा हम भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपना मानव जीवन को हम सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। तो टाइम ज्यादा हो गया, किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई करेक्शन है? क्षमा चाहता हूं क्योंकि दूसरा किसी का क्लास था, तो मैं स्टैंड बाय प्रभु सेवा करने का प्रयास किया। आप लोगों का कृपा से कुछ बोलने का बोला है। ओके, गंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।